मैया तो मुझे को दोष देती है, कितना विधान करके तो वो मेरी पूजा करता है, फिर आंख मूंद कर हाथ जोड़ कहता आओ कन्हैया आओ खाओ, और तू मुझको दोष देती है। बजरानी समझ नहीं सकी कि ये नीलमणि क्या कह रहा है। उसकी बत्ती तो केवल इतना ही जान रही है कि नंद जी ने उसको पकड़ रखा है, नहीं तो नंदनशाला में रसोई में जा घुसा होता। बजरानी ये नहीं जानती कि द्वार रुद्ध होने पर भी ये तो रंगनशाला में पहुंच गया। तुम इसको पकड़े हो, वो जो पहुंचने वाला था वो पहुंच गया, और उसने तो कर्ण का भोग स्वीकार कर लिया। ये प्रेम रस भावित स्नेह से जिसका हृदय आप्लावित है और जिसके मन में बिल्कुल माधुर्य भरा है, बात्सल्य भरा है, विशुद्ध हृदय है, इसको क्या पता कि इसमें इतना ऐश्वर्य है, ये यहाँ रुका हुआ भी वहां चला जा सकता है, एक जगह रहते हुए भी लाख जगह रह सकता है, कुछ पता नहीं, सब कुछ इसी का। तो बस वो बैठे बैठे खाने लगे वहां। नंद रानी बाहर आराम से बैठी है, नंद जी की आज पकड़े बैठे हैं, कोई बात ही नहीं। इधर जब कन्या की आंख खुली तो कन्या ने देखा कि भोग लग रहा है, पर आज दूसरी बात हो गई। इस बार कन्व के नेत्र, कन्व का मन, कन्व की बुद्धि पर जो आवरण था, पर्दा था, वो तो पर्दा छिन्न भिन्न हो गया। अब संशय ही रहा उनके मन में कि कन्व तो बस अब साक्षात कृष्ण दिखाई दिए, कन्व ब्राह्मण चरणों में लौट गए, उनके आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उस आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद धुले जाने लगे। आंसुओं की झड़ी से, आंसुओं की धारा से, ब्राह्मण के आंसुओं की धारा से श्री कृष्ण के चरण प्रक्षालित होने लगे। अब मानो उनको सुनाई दिया, कन्व को सुनाई दिया, कृष्ण ने इतने मधुर कंठ से बोले कि कन्व मुझे देखने के लिए तुम न मालूम कितने जन्मों से लालायित हो, इस बार मैं यहां मधुपुरी में प्रकट हो गया और मेरी माता, मेरे पिता, इनको भी तुमने देख लिया, इसीलिए तुम मेरा ये बाल रूप बाल लीला देख सके, नहीं तो ये कोई देख सकता ऐसी बात नहीं। बस ये कहा और वो झांकी अंतरित हो गई। इसके बाद कर्ण को न जाने कितनी देर तक होश नहीं रहा, वो स्वेद कंप स्तंभ पुलक आदि जितने वो दर्शन जनित सात्विक भाव हैं वो सब उदय होते रहे, तमाम शरीर में रोमांच, आंसुओं की धारा बह रही, शरीर में स्वेद आ गया, आनंद का कंपन होने लगा। इस प्रकार उनकी दशा बहुत देर तक रही। बाहर बैठे आनंद बाबा, यशोदा मैया पकड़े बैठे हैं अपने लाला को। जब कुछ भाव इनका शिथिल हुआ, एक पहर बीत गई, तो कन्व ने वो श्री कृष्ण के अधरों से जो सिक्त था, वो बचा हुआ खीर का अंश, खीर प्रसाद, उसको अपने पहले मस्तक पर ले आया। इसके बाद कुछ अंश मुंह में रखा, फिर सारे अंगों को उस खीर से चुपक लिया। जो बचा उसको गमछे में बांध लिया। अब द्वार खोले बाहर आए, ब्रजेश ने देखा कि ब्राह्मण का अणु अणु आनंद की वर्षा कर रहा है,
और उसमें दिव्य उन्माद के लक्षण सारे के सारे प्रकट हो रहे हैं ब्राह्मण में। कहीं रोष वोष तो है ही नहीं, दिव्योन्माद है। ब्रजेंद्र ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, कहा देव पारण हो गया। कर्ण बड़े गदगद स्वर से बोले, हा ब्रजेश हो गया, अनंत काल के लिए मित्रत्व हो गया। ये कहकर फिर मानो कुछ बड़बड़ाने लगे।
धनी गो कुल नंद जसो ये जाके हरी अब तार लियो ओ सफल जन्म प्रभु आज भयो ये सफल जन्म प्रभु आज भयो सफल जन्म प्रगत भयो अब पुण्य सुकृत फल प्रगत भयो अब पुण्य सुकृत फल दीन बंधु मोहि दास दिया दीन बंधु मोहि दास बारंबार नंद के आनन लोटत द्विज आनंद मयो ओ बारंबार नंद के आंगन लोटत द्विज आनंद ये मयो सफल जन्म प्रभु आज सफल ओ प्रभु आज मैं अपराध किया जाने
मैं अपराध
क्यों जाने मैं अपराध क्यों केही भेख जयो ओ एको जाने केही भेख जयो सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु भक्त हेत बस सूरदास प्रभु भक्त हेत हेत बस जसुमत गृह आनंद खेलयो ओ जसुमत गृह आनंद लयो ओ सफल जन्म प्रभु आज भयो धनी गो कुन धनी नंद जसोदा जाके हरि अवतार लयो ओ जाके हरि अवतार लयो ए सफल जन्म ओ प्रभु
काल्यनान्ते नरागर्षे रामकृष्णश्च गोकुले दृष्टिजानुभि पद्मचक्रञ्जसा ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां च क्रीडे जनयदुदम् कृष्णस्य गोप्योरुचिरं वीक्षकौमारचापलम् शृण्वत्या किल तन्मातुरिति होति समागताः। अब ये बड़े सुंदर लीला का प्रारंभ होता है। ये सुखदेव जी ने ब्रज गोपियों के मुंह से बड़े संक्षेप में इस लीला का वर्णन करवाया है। माँ यशोदा के उलाहने देने के रूप में स्वयं कुछ नहीं कहा और इस लीला को कुछ लोग जो भगवान को सारी मर्यादाओं में बांधे रखना चाहते हैं दोष की बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं, भगवान ने चोरी की, माखन चोरी की। भगवान ही जब चोरी करने लगेंगे तो आदर्श बिगड़ जाएगा। बात ठीक है, चोरी से आदर्श बिगड़ता ही है। तो इसका उत्तर तो इधर देते हैं कि भाई सुखदेव जी ने तो कहा ही नहीं, ये गोपियों की बात है, उन्होंने कह दी। पर ऐसी बात नहीं, ये वास्तव में चोरी नहीं थी। चोरी होती है दूसरे के धन की, पहली बात। चोरी होती है उसकी जो अपनी चीज को चुराई समझता है।
भगवान सबके स्वामी हैं, संसार का सारा ऐश्वर्य सारी संपत्ति उनकी, तो चोरी का कोई प्रश्न नहीं आता। दूसरी बात, ये जो चोरी है ये चोरी नहीं, ये तो एक ब्रज बालाओं के मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान का वरदान है। ये जिस रूप में भगवान को भोग लगाना चाहती थी वे, उसी रूप में उन्होंने भोग स्वीकार किया। ये नैवेद्य की नवीन पद्धति है, एक नैवेद्य अर्पण की और नैवेद्य ग्रहण की नवीन पद्धति है, तो बड़ी सुंदर चीज है ये। तो ये लीला इसी भाव से समझनी चाहिए कि ये कोई मामूली चोरी वाली बात नहीं। और ये जितनी ब्रज की गोपिकाएं थीं, इनके संबंध में आता है पद्म पुराण में, बहुत लंबा छोड़ा वर्णन है कि इनमें जो नित्य सिद्धा गोपियां थी वो तो भगवान के परकर रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थीं जो श्रुतियां थी, स्वयं ब्रह्म विद्या गोपी बनकर आई थी, वेद की ऋचाएं थी, दंडकारण्य के ऋषि थे। उसमें से दो तीन वर्णन पद्म पुराण के संक्षेप में, एक ऋषि थे उनका नाम था उग्रतपा, ये बड़े बड़े अग्निहोत्री गर्भवती थे, उनकी तपस्या भी बड़ी विलक्षण रही। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तप किया, ये पंचदशाक्षर मंत्र का जाप किया, तो वे भगवान की कृपा से 100 कल्पों तक तप करने के फलस्वरूप सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुई। एक मुनि थे सत्यतपा, उन्होंने सूखे पत्तों पर रह करके श्री कृष्ण और श्री राधा जी के नृत्यमय रूप का ध्यान किया, दोनों को नाचते हुए उन्होंने ध्यान किया। तो 10 कल्प के बाद सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुई। एक हरिधामा नामक ऋषि थे, उन्होंने क्लीम काम बीज के द्वारा बिंसाक्षरी मंत्र का जाप किया और वे माधवी मंडप में कोमल कोमल कुसुम सैया पर लेटे युग सरकार का ध्यान करते थे। तो 3 कल्प के पश्चात सारंग नामक गोप के यहाँ रंगवेणी नाम से उनका अवतार हुआ। एक जाबाली नाम के ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि जंगल में बड़ी सुंदर एक बावली है, उस बावली के पश्चिम की ओर एक बड़ा मनोहर एक वट का वृक्ष है, उसके नीचे एक देवी बड़ी तपस्या कर रही है। देवी बड़ी मंगलमयी, बड़ी सुंदर, उसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा, उसका बायां हाथ अपनी कमर में लगा और दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण किए। तो जावाली देख के चकित हो गए कि ये देवी कौन तपस्या कर रही है। तो जब देवी का कुछ देर के बाद ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने पूछा कि माँ तुम कौन हो, तो कहा ब्रह्म विद्या मथुला योगींद्रैर याच मृग्यते साहम हरिपदाम भोजे काम्या सुचिरम तपः ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम केनानंदेन तृप्तधीः चराम्यस्मिन् वने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमम् तथापि शून्यम आत्मानम मन्ये कृष्ण रतन दना। ब्रह्म विद्या बोली कि मैं महाराज ब्रह्म विद्या हूं, बड़े बड़े योगी ज्ञानी मुमुक्षु मुझे ढूंढा करते कैसे ब्रह्म विद्या मिल जाए, तो परंतु मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति से वंचित हूं, तो उनकी प्राप्ति के लिए उन पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूं। मैं ब्रह्मानंद से तो परिपूर्ण हूं, ब्रह्मानंद का वितरण करती हूं, जिसको चाहे मुझसे ब्रह्मानंद ले ले। पर उस आनंद से मेरी बुद्धि वो अपने को सफल नहीं मानती। यद्यपि वे बुद्धि उससे परितृप्त है तो मुझको भी कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को सूना देखती हूँ। तो जावाली ने उनके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और वे एक पैर से ध्यान करके तो भगवान का तप करने लगे। तो नौ कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के यहाँ चित्रगंधा के नाम से जावाली का अवतार हुआ। कुशध्वज नाम के एक थे, उन्होंने रहीम मंत्र का जाप किया तो वे 10 वर्ष की उम्र के भगवान का ध्यान करते थे, वे भी कल्पों के बाद सुधीर नामक गोप के यहाँ पैदा हुए। इस प्रकार से ये जो गोपियां थीं, ये सब के सब भगवान की ये नित्य सिद्धा सी ही प्रेमिकाएं थी। तो ये कथा का आरंभ बड़ा सुंदर होता है, बड़ी बड़े बड़ा विस्तार है, संक्षेप में कहना है। एक दिन के बाद एक ग्वालिनी, ये तो बार बार आया करती ना, गोपियां तो बार बार आया करती नंद भवन में नंदलाल को देखने के लिए, बहाना ही करके आती। वो एक पशुदास जी का है, एक दिन ही आई शाम के वक्त, बोले दिया जलाने आई हूं, और दिया अंदर ले गई और जला के ले आई, बाहर आई तो फूंक से बुझा दिया। बोले दीवा बुझ गया, फिर जलाने जाऊं। अरे राम राम, ठीक पद बोल दू तुमने,
मदन सत भाल के सत तिलक छवि पर ये मदन सत सतवार नयन खंजन नवानो ओ नयन खंजन नवानो कमल के कुल वार मुख पर कमल के कुल वार मुख पर चंद दारोवार झलक ललित कपोल छवि पर ये मुकुर सतु
सतवार
झलक ललित कपोल छवि पर मुकुर सतु सतवार नासिका पर तीरवारो ओ नासिका पर तीरवारो अधर विद्रुम वार अधर विद्रुम वार मुख पर ये चंद्र दारों वार दसन पर कन वज्र वारों बीज दाड़िम वार ये दसन पर कन वज्र वारों बीज दाड़िम वार चिबुक पर चित बीत वारो ओ चिबुक पर चित बीत वारो प्राण वारो वार प्राण वारो वार मुख पर चंद्र दारो वार सूर प्रभु की निरखी शोभा सूर प्रभु की निरखी शोभा हो सके जो निहार मुख पर चंद्र दारो
तो ये बड़ी मनोहारिणी कथा है। और तो एक दिन
वो एक गोपी आई, गोपियां आती रहती। तो उस दिन क्या हुआ कि मैया दूसरे काम में लगी थी, कोई अतिथि आ गए थे, तो मैया को जल्दी रसोई बनानी थी और रोहिणी मैया अतिथियों की उधर दूसरी सेवा में लगी थी और ब्रजेश्वर स्वयं नारायण की सेवा कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा अपने मन में कि ये दही मथने का काम अगर छोड़ दिया जाए तो ये मक्खन मांगेगा, आएगा कहां से, और ये स्तनपान के लिए अभी मचल रहा है, तो अगर इसको स्तनपान करवाना छोड़ के मैं मथने जाती हूं तो ये रोने लगेगा। तो वो गोपी आई, तो मैया ने देखा कि इससे काम ले लिया जाए। गोपियां कहा करती कि मैया कुछ काम बताया करो। तो मैया ने सोचा कि आज ये दही मथ दे और मैं इतने इसको दूध पिला दूं और फिर मक्खन निकल जाएगा तो खाने को दे दूंगी। पाहुनी करीदे तनिक महो, हूं लागी गृह काज रसोई जसुमति बिनय कहो, आज करत मन मोहन मेरो आंचल आने गयो। कहा सखी तू जरा दही तो बिलो दे, मुझे रसोई भी करनी है और इधर ये मचल गया है, ये कहता है मैं तो पहले दूध पीऊंगा ही, लड़ाई करता है, तो तू मत दे। तो अब तो उसके हर्ष का पार नहीं, ये भाव की बात देखने की। आनंद में निमग्न हो गई कि कन्हैया के लिए आज मक्खन निकालना है, चली मथानी की ओर, जरा झांकी कीजिए इसकी। श्याम सुंदर को गोद में लिए मैया बैठी है और श्याम सुंदर मैया का स्तनपान कर रहे हैं, सामने मथानी रखी है और मथानी पर वो बिलोने के लिए जा रही है, लेकिन मथानी की ओर जा रही है मैया की आज्ञा से। मन में बड़ा हर्ष है पर आंख लगी है श्याम सुंदर पर और मन लगा है श्याम सुंदर। वो जो श्याम सुंदर श्री यशोदा मैया की गोद में, उनका जो उनके घुंघराले बाल, उनके ललाट का केसर बिंदु, उनके रत्नाए चंचल नयन, उनके लाल लाल होठ, गले में कठुला, बगसिंगा, बाघ के नख, वो नाभि कमल हस्त कमल, बस इन सारों से उसके नेत्र भरे। गोपिका जा रही है पर आंख इधर लगी है, अब आंख उधर झांके कैसे, वो चाहती है मथानी की ओर देखूं पर मथानी की ओर देख पाती नहीं, आंखें वहां से हटती नहीं और चलती जाती है। तो मथानी के पास तो पहुंची पर देख न सकी मथानी कहां है और क्या है। बस आते ही ठोकर लग गई दधी के मटके से, जिस मटके में दही था उस मटके के उसकी ठोकर लग गई जोर से, ठोकर लगते ही मटका उलट गया, उलट गया जो दही की धारा बह चली। अब वो कुछ लगा गिरा कैसा, तो उसने अब आंख उधर लगी है, अभी आंख हटती नहीं, इसने पेट्रोल के देखा जैसे अंधा देखता है, तो सोचा कि ये घड़ा कुछ तिरछा हो गया है, तो अपनी जान में उसको सीधा कर दिया और बिलोने लगी। दही सारा बह चुका था, रीता मत का है दही नहीं, तो व्याकुल मथती मथनिया आ रही थी दधि भू ढर के पर्यो, सारा दही तो जमीन पर पड़ गया, वो खाली मचके को मथने लगी। यशोदा रानी को पता नहीं, वो अपना लल्ला का मुंह देख रही है, लेकिन लल्ला सब जानते हैं। यशोदा रानी ने तो तब इस बात को जाना जब वो लाला जो हैं वो जो स्तन पी रहे थे उस स्तन पीते पीते उन्होंने स्तन पीना छोड़ दिया और हंसकर ग्वालिनी की ओर देखने लगे, हंसने लगे उसकी ओर देखने लगे और देखने यू अंगुली से कहने लगे वो देख, मैया से कहने लगे देख। तो अब मैया ने जब देखा कि ये नंदनंदन क्यों कह रहा है उधर देखने के लिए, ये तो तन्मय थी स्तनदान करने में, श्री कृष्ण ने उनको मानव जगाया और कहा कि देख तो सही, तो देखा तो तमाम मक्खन जो ऊपर से आया हुआ बहता चला जा रहा है। तो माता बोली अरे सखी सखी क्या करी, तो देख तो सही ये दही बह जा रहा है। अब उसको होश आया, उसने मथानी की ओर देखा तो देखा ये तो उलट ही गया सारा का सारा बह गया। बड़ा संकोच हुआ, बड़ी लज्जा मन में हुई। बजरानी को भी संकोच हुआ कि मैंने इसकी समाधि क्यों तोड़ दी, अरे दही बह गया इसकी समाधि मैंने तोड़ दी। तो श्याम सुंदर के मुंह को देख रही थी ना, कितना इसको आनंद आ रहा होगा। तो माखन जात जान नंदरानी सखी संहार कहो, सूर श्याम मुख निरख मगन भई दुहन संकोच सहयो। दोनों को संकोच हुआ, मैया को संकोच हुआ किसकी मैंने स्नेह समाधि तोड़ दी, और उसको संकोच हुआ कि देखो मैंने कहा तुम्हें मथने बैठी और दही सारा का सारा मैंने बहा दिया। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, तब बहुत दही था। तो उस दिन तो गई, अरे सूत्रपात होता, दूसरे दिन फिर आई। आज आके उसने देखा कि ब्रजेश्वरी जो है ये लाला को दूध पिला रही है। बोले नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। अब बलराम जी पास बैठे बड़ी मनोहार कर रही, पी ले। तो बलराम जी ने तो बात मान ली, जरा समझदार हो गए थे, बात मान ली। पर कन्हैया ने कहा मैं तो नहीं पीता, नहीं पीऊंगा। तो मैया ने एक युक्ति निकाली, बोली अरे देख ये जो दूध है ये कजरी गैया का है, कजरी गैया का ये दूध अगर तेरे पी लिया तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। जैसे और ब्रज बालकों की चोटी लंबी है वैसी तेरी लंबी लंबी हो जाएगी। कजरी को पै पिए हुलाल जासो तेरी बेन बढ़े, जैसे देख और ब्रज बालक त्यों बल बेस चढ़े। अब इस प्रलोभन में आ गए नंदलाल, तो चोटी बढ़ेगी मैं दूध पिएंगे तो, कजरी का दूध पिएंगे तो चोटी लंबी हो जाएगी, तो दूध पीने लगे। अब देखते हैं चोटी लंबी हुई कि नहीं। दूध पीते पीते हाथ से देखो चोटी लंबी हुई कि नहीं, और जब लंबी नहीं हुई तब बोले मैया धोखा दिया, दूध पिला दिया। तो हार गए ना, दूध नहीं पीऊंगा ये हट था, और मैया ने हट को तोड़ दिया तो हार गए। तो पराजय का रोष, हार का रोष आया, बोले आइंदे तो दूध पीना ही नहीं है और माँ की बात माननी नहीं है। इस प्रकार से मन में उसके उनके मुख पर भाव व्यक्त होने लगे। यशोदा जी हंसी, पुन पीवत ही कच टकटोरत झूठे जनन रहे, सूर निरख मुख हंसते यशोदा सो सुख उर न चढ़े। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, दूध पी लिया ना रूठ गए फिर मना लेंगे और क्या है। ग्वालिनी जो है ये सब देख रही थी तो ये रूठ गए, रूठ करके खड़े हो गए अलग। अब महाराज क्या आश्चर्य हुआ, होने की बात उनको करनी थी। ये जहां खड़ी रही गोपी उसके ठीक बगल में जाके खड़े हो गए तो जरा सा स्पर्श हो गया। अब स्पर्श होते ही ये तो बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। जब चेतना हुई उसको तब इसने पाया अपने को अपने घर में, 8 पहर के बाद इसको होश हुआ। पूरे 8 पहर पर तो ये पत्थर की प्रतिमा सी निष्पंद बैठी रही। नंद भवन में इसको घर वाले उठा के लाए नंद भवन से। ग्वालिन को ये मालूम भी नहीं, वो तो केवल अभी यही देख रही है कि नंदन नंदन चोटी को संभाल रहे हैं और कह रहे हैं मेरी चोटी बड़ी तो नहीं मैया, उसको यही भान हो रहा है। बहुत देर के बाद जब उसका ध्यान टूटा, फिर दौड़ी नंद भवन की ओर आई। तो तीसरे दिन ये फिर आई, देख रही तो सजी सजाई हुई थाली है बड़ी बढ़िया, और उसमें तमाम मिठाई रखी है और भगवान उसकी ओर देखते नहीं, ताकते नहीं। तो लला खा ले, बोले नाना मैया रे मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहते तू मोहि नहीं रुचि आवे। मुझे तो मैया माखन अच्छा लगे और ये तुम्हारा मिठाई उठाई तो अच्छे लगे नहीं। अब ये भगवान के वचनों में अमृत झर रहा लाला के, और पी पी करके वो मानो मत हो रही। उसके मन में आया कि क्या मेरे घर भी ये कभी आएंगे, और मक्खन चाहते हैं ना, तो मेरे घर का भी कभी ये नवनीत ग्रहण करेंगे। पर क्यों आने लगे, इनके घर में कमी थोड़ी ही है, और कहीं आए भी तो मुझे देख करके ये संकोच में पड़ जाएंगे, लेंगे नहीं। तो कहीं ऐसा हो जाए कि मैं छिप जाऊं और ये आकर मन माना माखन आरोग तो मैं देख के निहाल हो जाऊं, तो मेरी या ये साध भी कभी पूरी होगी क्या। मैं छिपी रहूं और ये आ जाए, ये उसने अपने मन में चिंता की। तो अब भगवान जो हैं ये सर्वांतरयामी हैं और ये भक्तवांछा कल्पतरु हैं। भक्त के मन में उनकी सेवा के लिए जो वांछा पैदा होती है, उस वांछा को वे अपने आप को भूलकर पूरी करते हैं। वहां ये नहीं देखते कि हम भगवान हैं, सच्चिदानंद घन हैं, हम क्या हैं। भक्त के मन में जिस रूप में अपने भगवान को पाने की इच्छा होती है, उसी रूप में भगवान उसके लिए बन जाते हैं। तो प्रेम के भूखे हैं ये सर्वांतर्यामी स्वयं भगवान। इनके मन पर ये बात आ गई तो बैठे जाई मथनिया के ढिग, मैं तब रहूं छपानी। उसने कहा अपने मन में कि मैं तो छिप जाऊं और ये मथनिया के पास आके बैठे। सूरदास प्रभु अंतर जानी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान मन की बात जान गए, ग्वालिन के मन की बात जान गए। बस वो तो मन में मरोड़ करती हुई इसी मन को लेकर आवेंगे, आ जाएं, कब आवेंगे, क्यों आने लगे, आवेंगे जरूर आवेंगे, इस प्रकार वो इसी भाव प्रवाह में बहती हुई गधी मंथन किए बिना घर चली गई। उसे अब प्रतीत होने लगा आ गए दरवाजे पर, आ गए तो दही जल्दी से बिलोलू तो मक्खन निकाल के रखूं, अब आते ही होंगे, उनको भूख लगी होगी। इस प्रकार वो मुहूर्त करती, दौड़ दौड़ के बाहर जाती। वो अब तक उसे ये पता नहीं था कि वो उन्होंने जान लिया, तुम्हारा निमंत्रण मान लिया है। इधर क्या हुआ कि गोप सुंदरी ये जो ही घर से, नंद बाबा घर से बाहर निकली, अब ये तो मैया के गोद से कूदे। मैया ने पकड़ा हाथ, बड़े नहीं रही तुम्हारे मिठाई रही तो मक्खन खिलाऊंगी, ठहर ठहर ठहर।